أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوا عنه يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. آپ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہیں لوگوں کو، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے. اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بچے اپنے خرچ سے. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم تاکہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت کی باتوں میں. اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم، کہہ دیجئے سوارنا ان کے کام کا بہتر ہے، اور اگر ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے اور سوارنے والے کو. اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا، بے شک اللہ زبردست ہے تدبیر والا. بزرگان محترم، اس سے پہلے ابواب البر کے 14 احکام بیان ہوئے، یہاں ان دو آیتوں میں مزید 3 احکام بیان فرما رہے ہیں، اور یہاں 15 حکم شراب اور جوا سے متعلق ہے. صحابہ کرام نے جو سوالات کیے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان میں سے ایک سوال شراب اور جوا سے متعلق تھا. اسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں. عرب جاہلیت میں جو بری عادتیں تھیں ان میں شراب پینا، جوا کھیلنا، بدکاری کرنا وغیرہ ایک عام عادتیں تھیں، اور ان عادتوں کو وہ لوگ برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کو فخریہ بیان کرتے تھے، اپنے اور اپنے بڑوں کے کارنامے کے طور پر بیان کرتے تھے. جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی اس کا سر فخر سے اتنا ہی اونچا ہوتا تھا، لیکن جو نیک طبیعت والے لوگ ہوتے ہیں وہ بری چیزوں سے خواہ وہ حرام نہ ہو شروع سے ہی دور رہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ بچپن ہی سے ہر گندی چیز سے اور ہر بری عادت سے محفوظ تھے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بہت حد تک محفوظ تھے, کبھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی. اسی طرح سے اور بعض صحابہ بھی جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ گئے اور ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی, تو بعض صحابہ کرام حضرت عمر, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم وغیرہ آپ علیہ الصلات والسلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کرنے لگے کہ شراب کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے. ایک تو اس سے عقل بھی خراب ہوتی ہے اور مال بھی برباد ہوتا ہے, اور جوا کا شریعت میں کیا حکم ہے. تو اس موقع پر یہ آیت اللہ نے نازل کی, اسألونک عن الخمر والمیسر, شراب اور جوا سے متعلق پوچھتے ہیں. شراب سے متعلق اللہ نے آہستہ آہستہ حکم نازل فرمایا, ایک ساتھ حرام ہونے کا حکم نازل نہیں کیا, اس لیے کہ عربوں کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی. اگر ایک ہی وقت میں اللہ تعالی حرام ہونے کا حکم نازل کر دیتے تو ان کے لیے بڑی مشکل پیش آتی. سب سے پہلے یہی آیت نازل ہوئی, اس آیت سے یہ بتا دیا گیا کہ شراب اور جوا میں کچھ فائدے ہیں لیکن ان کے نقصانات اور جو گناہ ہیں وہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں. جب یہ آیت اتری بعض صحابہ کرام سمجھ گئے کہ بہت جلد شراب اور جوا حرام کر دیے جائیں گے, اس لیے کہ جن چیزوں میں گناہ زیادہ ہوتا ہے وہ چیزیں حلال باقی نہیں رہ سکتی. اس لیے بعض صحابہ کرام اس وقت سے شراب اور جوا سے دور ہو گئے. لیکن ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے عام طور پر شراب پیتے تھے. ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی دعوت کی, کچھ صحابہ جمع ہوئے, دعوت ہوئی, دعوت کے بعد شراب کا دور چلا, خوب شراب پی گئی. شراب پینے کے بعد پھر نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ کرام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. شراب کا نشہ چڑھ گیا تھا اس لیے جو امامت کر رہے تھے انہوں نے سورہ کافرون میں غلطی کر دی, قل یا ایھا الکافرون میں بڑی غلطی کر دی جس سے نماز بھی فاسد ہو رہی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس موقع پر اللہ نے دوسری آیت نازل کی, اے ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا. نشہ جب چھڑ جائے تو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو اب اور صحابہ کرام رکنے والے ہو گئے لیکن कुल्ली तौर पर हराम नहीं किया गया था, इसलिए शराब पी जा रही थी। चंद दिनों के बाद हजरत इतबान इब्ने मालिक अंसारी रजी अल्लाह अनु ने बाज़े सहाबा की दावत की और वहां भी शराब का दौर चला। फिर जब नशा चढ़ा तो सहाबा कराम भी आपस में कसीदे सुनाने लगे और जब कसीदे सुनाते तो अपने जो फखरिया कारनामे होते उनको बयान करते। तो साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह अनु ने अपने मुहाजिर सहाबा के कारनामे बयान किए तो अंसार सहाबा की बुराई हुई। तो एक अंसारी नौजवान खड़ा हुआ और एक सख्त हड्डी लेकर उनके ऊपर मार दिया, जिससे साद इब्न अबी वक्कास शदीद जख्मी हो गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचकर शिकायत की। ऐसा वाकया पेश आया, उस मौके पर अल्लाह ने शराब को मुतलकन हराम करार दे दिया। और ये सूरह मायदा की दो आयतें हैं, सातवां पारा का जो पहला सफा है उसके आखिर की दो आयतें हैं। या अय्युहल्लज़ीना मनु इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अनसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये कह दिया गया, ए ईमान वालो, शराब, जुआ, बुत परस्ती और जुओं के तीर, ये सब गंदगी की चीज़ें हैं, शैतानी काम है, तुम इनसे बचो। अब शराब मुतलक तौर पर हराम करार दे दी गई, सहाबा कराम पूरे तौर पर शराब से बच गए, दूर हो गए। हजरत अनस कहते हैं, जिस वक़्त शराब की हुरमत का ऐलान हुआ, मैं बहुत से सहाबा को शराब पिला रहा था, अबू तलहा, अबू उबैदा वगैरह को। जैसे ही निदा देने वाले की मुनादी की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी, सब ने अपने अपने बर्तन फेंक दिए, हत्ता के जो अपने मुंह तक ले जा चुका था उसने भी फेंक दिया। और शराब मदीने की गलियों में बारिश के पानी की तरह से बहने लगा, सैलाब की तरह से शराब बहने लगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया, जिसके पास जो शराब है वो फुलां जगह लाकर जमा कर दे। सहाबा कराम तो बखुशी तोड़ रहे थे, अब तक जिनको शराब से बड़ी दिलचस्पी थी एकदम से नफरत हो गई और बर्तन और उसके जो घड़े थे तोड़ रहे थे। बहुत कम बर्तन बाकी रह गए थे। आप अलैहिस्सलाम का हुक्म हुआ तो उनको एक जगह लाकर जमा कर दिया। अल्लाह के नबी खुद पहुंचे और आपने अपनी लाठी से उन बर्तनों को तोड़ा। इस तरह से शराब ख़त्म हुई और उसकी हुरमत का ऐलान हुआ। एक सहाबी शराब हराम होने से पहले मुल्क के शाम गए हुए थे, शराब का कारोबार करते थे, बहुत सी बेहतरीन शराब लेकर आए। अभी मक्के में दाखिल नहीं हुए, उनके कान में ये बात पहुंच गई कि शराब हराम कर दी गई है। तो बड़ी कीमती शराब उनके हाथ में थी, उससे हजारों लाखों का नफा हो रहा था। उन्होंने उन सारे बर्तनों को एक पहाड़ी पर डाल दिया, खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे कि हजारों और लाखों का नफा है और शराब के बर्तन पहाड़ी पर डाल कर आया हूं, आपका क्या हुक्म है, उस पर अमल करूंगा। आपने फरमाया हराम हो चुकी है शराब, इसलिए उन बर्तनों को तोड़ दो। तो बगैर किसी ताखीर के बखुशी जाते हैं और सारे बर्तनों को तोड़ देते हैं। तो इस तरह से जिनको लम्हा पहले मोहब्बत थी, लम्हा बाद नफरत हो गई। कहते हैं शराब जो गलियों में बह पड़ी थी, महीनों तक उसकी बदबू आती रही। जब भी बारिश होती तो फिर उसकी बदबू उठती और उसकी बदबू महसूस की जाती थी। इस तरह से तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने शराब की हुरमत नाजिल की और उसका हराम होना बयान किया। और सहाबा कराम चूंकि शरीयत में इजाजत थी, अक्सर पीते रहे, लेकिन जो ही शराब हराम हो गई तो अब वो बखुशी बर्तनों को तोड़ने वाले हो गए। उसके बाद मुतलक तौर पर नफरत हो गई। लिखते हैं कि आज से चंद साल पहले के 30-40 साल पहले अमेरिका में भी बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में बिल पास करके शराब ममनू है, उस पर पाबंदी आयद की जाती है, पाबंदी आयद की गई है। और उसके लिए बड़े ऐलानात शाये हुए और तरगीब दी गई, शराब की खराबियों को बयान किया गया, सारी कोशिशें की गई। लेकिन उसके बाद लोगों ने इस कदर शराब पी थी कि पाबंदी से पहले उतनी नहीं पी थी। अब ये इस्लामी मिजाज गैर इस्लामी मिजाज दोनों में इतना फर्क क्यों है? आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मुसलमान बचते हैं, उससे नफरत करते हैं। तो ये इस्लामी मिजाज क्यों है कि जहां कोई हुक्म दिया जाता है लब्बैक कहकर उसे कबूल करते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, और हुकूमत अपने बलबोते पर जो पाबंदी आयद करती है अक्सर नाकाम हो जाती है? तो उसका साफ जवाब यह है कि इस्लाम जिसका हुक्म देता है, हुक्म देने वाले जिनकी जुबान से अल्लाह अहकाम जारी करते हैं, अल्लाह के रसूल, बड़े सहाबा, सब पहले अमल करते हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक जमाना तक सहाबा का जहन बनाया है, इस्लामी जहन बनाया है। जब इस्लामी जहन बन गया तो हर अमल आसान हो गया। तो इस्लामी जहन बनना ये बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए सहाबा कराम के सामने कोई मुश्किल नहीं नजर आती थी, जहां जो हुक्म होता था उसे कर गुजरते थे। आज भी कभी कोई सूबा ऐलान करता है, कभी कोई सूबा ऐलान करता है, लेकिन शराब पीने की मकदार बढ़ती ही जाती है, कहीं कोई कमी नहीं होती। तो अल्लाह फरमाते हैं यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर, आपसे लोग पूछते हैं शराब और जुए के बारे में। खमरुन अंगूरी शराब को कहते हैं, जो अंगूर का कच्चा पानी होता है उससे वो शराब बनती है। फिर आगे चलकर हर वो चीज जिससे नशा पैदा हो जाए उसको शराब का हुक्म दे दिया गया, जिससे नशा चढ़ जाए। और मैसिर जुआ को कहते हैं, जुआ भी जाहिर है कि आदमी ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के चक्कर में अपने पास जो होता है उसे भी खो देता है। तो एक बड़ी सख्त बीमारी है, एक लत है जो पड़ जाती है। खम्र, शराब को खम्र क्यों कहते हैं? खम्रुन का माना है छुपा लेना, इसीलिए अरबी में ओढ़नी को खिमार कहते हैं, इसलिए कि ओढ़नी सर छुपा लेती है। खम्र क्यों कहते हैं? इसलिए कि शराब अक्ल पर पर्दा डाल देती है। मैसिर, इसका माना आसान, जो चीज आसान हो। जुआ को मैसिर इसलिए कहते हैं कि कमाई आसान हो जाती है। आदमी ये समझता है कि खामखाही मेहनत क्यों करे और उसके पीछे खून पसीना क्यों बहाए, एक शर्त बांध ली जाए और सारे पैसे हम हासिल कर लें। तो इस तरह से शराब और जुआ की बुराइयों में जा फंसता है। आप कहिए, उन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए फायदे भी हैं। उमनाफिउल इन्नास, कुछ फायदे भी हैं। फायदा क्या है? अगरचे हकीकी फायदा कुछ नहीं, जाहिरी फायदे हैं। शराब में जाहिरी फायदा यह है कि शराबी को तसल्ली होती है, शराब पीने के बाद उसे खुशी होती है, शराब पीने के बाद वो दूसरी दुनिया में चला जाता है और शराब पीने के बाद वो अपने आप को कामयाब समझता है, उससे बचना उसे मुश्किल हो जाता है। ये फायदे हैं। जो हकीकतन फायदे नहीं, नुकसानात हैं, लेकिन दुनियादार उनको फायदे समझते हैं। इसीलिए जहां निचले तबके वाले पीते हैं, अकलमंद और ऊंचे तबके वाले भी पीते हैं। और यही बात है कि कुछ फायदा है, तो क्या फायदा है वो यही है। और जुआ में फायदा क्या है? कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, बैठे बिठाए लॉटरी लगती है और हजारों लाखों रुपए हासिल होते हैं। तो जो मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से हिफाजत हो जाती है। ये फायदे हैं, वो मुनाफिउल इन्नास, और फायदे हैं लोगों के लिए। वो इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, और उनका गुनाह उनके फायदे से कहीं बड़ा है। उनका गुनाह यानी उनका नुकसान, जाहिरी नुकसान है, बातिनी नुकसान है। जाहिरी नुकसान है, सेहत खराब होती है, सेहत खराब होती है, चेहरे की खूबसूरती चली जाती है, आदमी जलील और रुस्वा होता है, बच्चे उससे खेलते हैं, वो बकवास करता है, बहकी बहकी बातें करता है और ऐसी ऐसी हरकतें करता है, अलियाज़ु बिल्ला, के उनसे शरीफ तबीयत दूर भागती है शराब पीने से। और बातिनी खराबी, अक्ल खराब हो जाती है और अच्छी और बुरी चीज से तमीज खत्म हो जाती है। अपनी मोहसिन बीवी को तलाक दे देता है, एहसान करने वाली माँ के साथ जुल्म सितम ढाता है और अपने पैसे अपने हाथ से बर्बाद करता है, अपने बच्चों की देखभाल नहीं करता, न जाने और क्या क्या करता है। और जुआ में जाहिरी फायदे हैं कुछ, तो बुराइयां, अल्लाहु अकबर, जाहिरी बुराइयां भी हैं, बातिनी बुराइयां भी हैं। जाहिरी बुराई और खराबी यह है कि पैसों को हासिल करने के चक्कर में पैसों को खो देता है, बैठे बिठाए हजारों लाखों को लेने के चक्कर में हजारों लाखों से हाथ धो बैठता है। और उसके अलावा जो कमाई है, मेहनत जो अच्छी चीज से, उससे जी चुरा लेता है। आजकल ये लॉटरी या उसके बाद कोई ना कोई लगेगी, इस तरह से बुरी तरह से फंसता है कि मानवीय खराबी, बातिनी खराबी के हमेशा की नींद खो देता है, सुकून खत्म हो जाता है, चैन खत्म हो जाता है, माल हाथ से चला जाता है, कभी अपना घर भी उसके हाथ से चला जाता है। इस तरह से शराब और जुआ दोनों में बुरी खराबी मुश्तरक क्या है, दोनों के अंदर मुश्तरक खराबी यानी वैस मुहमा अकबर उमिन नफ़ईहिमा, अभी बताऊंगा इंशाअल्लाह, और उनका गुनाह उनके नफा से कहीं ज्यादा है। तो जाहिरी खराबियां भी हैं और बातिनी खराबियां भी हैं। हां, मुश्तरक खराबी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वयसअलूनका माज़ा युन्फिकून, और आपसे पूछते हैं सहाबा वो क्या खर्च करें। यहां 15वां हुक्म बयान हुआ था, अब अल्लाह 16वां हुक्म बयान फरमा रहे हैं। सहाबा आपसे पूछ रहे हैं वो खर्च क्या करें। इससे पहले दो आयतों पहले बिल्कुल यही आयत आई थी, तो वहां जवाब कुछ और दिया गया। इस अलूनका माजा युन्फिकून, कुल मा अनफक्तुम मिन खैर फलिल वालिदैनि वल अक्रबीन वल यतामा वल मसाकीन वबनि सबील। ये जवाब दिया गया कि तुम जो कुछ खर्च करो वो वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, यतीमों, मिस्कीनों और मोहताजों और मुसाफिरों के लिए है। फिर यही सवाल यहां दोबारा कर रहे हैं, लेकिन जवाब दूसरा दिया जा रहा है। और इससे पहले ये बात आ चुकी है कि मंशा, साइल का मंशा समझकर जवाब देना, सवाल एक ही होता है। जैसे अल्लाह के नबी से हजरत जिब्राइल ने सवाल किया, कियामत कब आएगी, अल्लाह के नबी ने जिब्राइल का मंशा समझकर जवाब दिया कि पूछने वाले को और जिससे पूछा जा रहा है दोनों को कयामत कब आएगी उसका इल्म नहीं है। आप मंशा समझ गए कि जिब्राइल पूछ रहे हैं कयामत का वक्त बताइए। एक सहाबी ने पूछा कयामत कब आएगी, आपने मंशा समझकर पूछा तुमने क्या तैयारी कर रखी है, तो उन्होंने कहा तैयारी तो कुछ नहीं, हां अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत है। आपने फरमाया फिर सुनो, जिसके साथ मोहब्बत होगी कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे, उनके साथ रहना नसीब होगा बशर्ते के सच्ची मोहब्बत हो। इसी तरह से एक सहाबी ने सवाल किया कयामत कब आएगी, आपने मंशा समझकर जवाब दिया कि ये कयामत की अलामतों को पूछ रहे हैं। आपने फरमाया नंगे पैर, नंगे बदन रहने वाले बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और फख्र किया करेंगे, चरवाहा जैसे लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, यानी दौलत आम हो जाएगी और उसमें तमीज नहीं होगी, किसे दौलत मिलना है या किसे नहीं मिलना है उसमें कोई तमीज नहीं होगी। इस तरह से आपने मुस्तकिल अलग अलग जवाब दिए। यहां भी इसी तरह से सवाल वही है, जवाब दूसरा दे रहे हैं। सहाबा आपसे पूछ रहे हैं कि क्या खर्च करें, कुलिल अफवा, आप कहिए जो अपने खर्च से बच जाए, जो जायद पैसे हैं वो खर्च करो। अब बड़ा प्यारा जवाब दिया है, जायद पैसों से मुराद जो असली जरूरतों से जायद है, जो असली और रोजमर्रा की माहाना की जरूरतों से जो जायद पैसे हैं उनको खर्च किया करो। तो आसान जवाब दिया, एक तो है साल भर में ज़कात फ़र्ज़ होती है उसका अलग मुस्तकिल निसाब है, मुस्तकिल हुक्म है। सदक़ा फ़ित्र है उसका अलग हुक्म है। ऐसे ही अपनी ज़ात पर और अपने अहल व अयाल पर खर्च करना, वालिदैन पर खर्च करना उसका अलग हुक्म है। इन सब पर खर्च करने के बाद और आगे क्या खर्च करें, उसका जवाब दिया गया। अब इंसान पाबंद नहीं है। अब क्या है, अल्लाह ने जितना दिया है, जो जायद पैसे हैं जायद पैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, जो बच जाए उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون, इसी तरह से अल्लाह तुम्हारे सामने अपनी बातें अहकाम खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम फिक्र करो, गौर करो दुनिया और आखिरत में। यानी अल्लाह ने एक जगह सवाल हुआ था क्या खर्च करें, वहां एक जवाब दिया। यहां सवाल हो रहा है क्या खर्च करें, दूसरा जवाब दे रहे हैं। शराब और जुआ के बारे में पूछा जा रहा है, अल्लाह ये जवाब दे रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह से अहकाम खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम गौर व फिक्र करो दुनिया और आखिरत में, यानी दुनिया और आखिरत के नफा और नुकसान में। जहां दोनों का नफा हो उसे बखुशी हासिल करो, जहां जहां नफा ना हो उससे अपने आप को बचाओ। फिर दुनिया वल आखिरा, यहां 16वां हुक्म था, आगे 17वां हुक्म अल्लाह बयान कर रहे हैं। ओयस अलूनक अनिल यतामा, ये 17वां हुक्म है। और आपसे सहाबा पूछते हैं यतीमों के बारे में कि जिन लोगों के मातहत उनकी परवरिश में यतीम बच्चे आ जाए उनकी परवरिश किस तरह से की जाए। एक तो यतीम बच्चे आते हैं तो अपने वालिदैन से कुछ माल जरूर लेकर आते हैं। अब जिनकी परवरिश में आते हैं, अगर आदमी खैरखा होता है तो अपनी जेब से ही खर्च करता है। कभी ऐसा होता है कि उसके पास पैसे नहीं होते, परवरिश कबूल कर लेता है, तो उस वक्त क्या करें। उस वक्त अरबों में एक आम तरीका ये था कि यतीमों का माल खा जाते थे और अपने माल से यतीमों का माल मिलाकर फिर यतीमों का सारा ही माल खा जाते थे। अल्लाह ने सूरे निसा में वईद सुनाई, जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, अल्लज़ीन याकुलून अमवाल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में आग भर रहे हैं, अंगारे भर रहे हैं, यानी वो सीधे जहन्नम में जाएंगे, जहन्नमी हैं, सारा पैसा हराम है जो यतीमों का माल खा जाते हैं। जब ये आए तो त्री सहाबा सहम गए, लोग डर गए अब क्या होगा। इसलिए यतीमों का खाना अलग बनाते थे यतीमों के पैसे से। अब उसमें दुश्वारी होती थी कि कभी खाना बच जाता तो हाथ नहीं लगाते थे डर कर, फिर वो खाना सड़ जाता था। और कभी खाना कम पड़ता था तो फिर अपने खाने से देना पड़ता था, कोई आदमी देता और कोई आदमी नहीं देता तो यतीम का हक ज़ाय होता। तो परेशानी पेश आई तो सहाबा ने सवाल किया अब क्या किया जाए। तो उस मौके पर अल्लाह ने सहूलत दी, रुख्सत दी, देखो नीयत अच्छी होनी चाहिए इस्लाह की, खैर की, यतीम का माल खाने की नीयत ना हो, मकसूद वो ना हो। अगर बेहतर समझो अपने माल के साथ यतीम का माल मिला लो और मुश्तरक खाना बनाओ और यतीम को खिलाओ, अगर यतीम का एक दो लुक्मा अपने खाने में आ जाए چونکہ نیت فساد کی نہیں تھی اللہ تعالیٰ اس قدر معاف کر دیں گے. اور اپنا کھانا یتیم کے کھانے میں چلا جائے وہاں تمہیں ثواب ہی ثواب ہے. ایک طرف تو پرورش کا، ایک طرف اپنا مال یتیم کے مال میں جانے کا، ثواب ہی ثواب ہے. اللہ نیت کو دیکھ رہے ہیں. اصلاح کی نیت کس کی ہے، فساد کرنے کی نیت کس کی ہے؟ اگر یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو بھلا یہ تو سمجھو تمہارے بھائی ہیں، یا تو نسبی بھائی ہیں یا دینی بھائی ہیں، لہذا دونوں اعتبار سے تم کو ثواب ہی ثواب ہے. ہاں اتنی بات ضرور رہنی چاہیے اور اتنا خیال رہنا چاہیے، اس کا مال ہڑپ کرنے اور کھا جانے کی نیت نہ ہو، ختم کرنے کا ارادہ نہ ہو، اپنا کچھ وہاں چلا جائے یا وہاں سے کچھ یہاں آ جائے اور اس میں کوئی بری نیت نہ ہو، تو پھر اللہ جو کمی زیادتی ہو جاتی اسے معاف کر دیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. آپ کہیے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح، ان کو سنوارنا بہت بہتر ہے، بہتر کام ہے. یعنی نیت اصلاح کی ہو، اچھی ہو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر کھانا ملا کر پکانے میں اصلاح سمجھتے ہو ملا کر پکاؤ، الگ پکانے میں اصلاح سمجھتے ہو الگ پکاؤ، کم پڑ جائے اپنی طرف سے دے دو. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کا خرچ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، دینی یا نسبی بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اب رہا کس کی نیت اصلاح کی ہے اور کس کی نیت فساد کرنے کی ہے، وہ تو اللہ جانتے ہیں. چاہے تم زبان سے کچھ اور کہو، تمہارے دل میں کچھ اور ہو، اللہ دل کو جانتے ہیں، لہذا اللہ اس کا بدلہ لیں گے. اگر بری نیت ہوگی، اچھی نیت ہوگی تو اللہ اچھا بدلہ دیں گے. اور اللہ جانتے ہیں خرابی پیدا کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتے تو تم کو مشقت میں ڈال دیتے. اللہ یہ کہتے کہ الگ ہی پکانا ضروری ہے، اور جہاں کم پڑ جائے اپنی طرف سے کھلانا ضروری ہے، یا اللہ یہ کہتے یتیم کے مال سے لینا جائز نہیں، اپنے ہی مال سے کھلانا پڑے گا، تو پھر ہم کو کرنا ہی پڑے گا. لیکن اللہ تعالی مشقت ڈالنا نہیں چاہتے. اللہ دونوں کی رعایت کر کے احکام بیان کرتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، مشقت ڈالنا چاہتے تو ضرور ڈالتے، اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت عزیز ہے، وہ زبردست ہیں، اس سے آگے کوئی نہیں. لیکن مشقت کیوں نہیں ڈالتے؟ اس کی دوسری صفت حکیم ہے، وہ حکمت والے ہیں، اس لیے ایسے احکام بیان کرتے ہیں جن میں دونوں کی رعایت ہو جاتی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتے تو تم کو مشقت میں ڈالتے. بلا شبہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، تدبیر والا ہے. جو اس سے پہلے بات آئی تھی مشترک خرابی، وہ ہے بغض اور عداوت. بغضا، یہ خرابی خود قرآن نے بیان کی ہے. اَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى، کہ شراب اور جوا میں دشمنی پیدا ہوتی ہے اور حسد پیدا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، شراب پینے کے بعد دشمنی پیدا ہونا صحیح ہے، عقل اپنے ٹھکانے نہیں رہتی، وہ خیرخواہ کو بدخواہ سمجھتا ہے، بدخواہ کو خیرخواہ سمجھتا ہے، تو دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اب کوئی شخص اس نے جوا کھیلا تھا تاکہ دوسرے کا مال لے لے، لیکن دوسرا اس کا مال لے گیا تو کیا اس سے دشمنی پیدا نہیں ہوگی؟ اور آگے فرمایا یہ جو مشترک خرابی ہے اس سے ایک اور مشترک خرابی نکلتی ہے، موقع دیکھتا ہے اور موقع ملتا ہے تو قتل بھی کر دیتا ہے، ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ شراب میں بھی یہ بات ہوتی ہے اور جوا میں بھی یہ بات ہوتی ہے، اس لیے یہ برائیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ نفسیات کو سامنے رکھ کر حکم دیتے ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ شراب کو اور جوا کو حرام قرار دیے۔ اسی طرح سے نماز لیجئے کہ نماز آج جیسے پڑھی جاتی ہے شروع میں ایسی نہیں تھی، نماز میں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، خیریت معلوم کرتے تھے اور سلام کلام ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک صحابی غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حبشہ سے ایتھوپیا سے سیدھے مدینہ آئے، اللہ کے نبی کو تلاش کرتے ہوئے مسجد آئے، دیکھا نماز پڑھ رہے تھے، سیدھے پہنچے اور آپ کو سلام کیا۔ اللہ کے نبی اب جواب نہیں دے رہے تھے، پریشان ہو گئے کہ جواب کیوں نہیں دیتے۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اپنے احکام میں سے نئے نئے احکام اتارتے رہتے ہیں، اب اللہ نے نماز میں ہر طرح کے کلام کو، سلام کو، سب کو ناجائز قرار دے دیا ہے، لہذا اب جو نماز پڑھی جاتی تھی پڑھی جاتی ہے، شروع میں ایسی نہیں تھی۔ تو تدریجی طور پر اللہ نے بہت سے احکام بیان کیے، مثبت بھی اور منفی بھی، کرنے کے کام بھی اور نہ کرنے کے کام بھی، تو نفسیات کا لحاظ کر کے، اس لیے کہ اللہ بڑی حکمت والے ہیں۔